आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी मानवता को लाभ सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उन्होंने एआई मॉडल से जुड़े अंतर्निहित पूर्वाग्रहों से संबंधित चर्चा की। प्रधानमंत्री ने एआई फाउंडेशन और काउंसिल फॉर सस्टेनेबल एआई स्थापित किए जाने के निर्णय के लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बधाई दी। उन्होंने उत्तरदायी और समावेशी एआई शासन आगे बढ़ाने में भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने एक प्रमुख घोषणा में कहा कि भारत अगले एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। यह सबके लाभ के लिए एआई के भविष्य को आकार देने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने एआई के लिए वैश्विक साझेदारी और समावेशी बनाने का भी आह्वान किया, जिससे विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं का समाधान सुनिश्चित हो सके। अपने संबोधन के समापन में प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई के भविष्य की कुंजी मशीनें नहीं बल्कि मानवता है। शिखर सम्मेलन में समावेशन के लिए एआई बुनियादी ढांचे तक अधिक पहुंच, दायित्वपूर्ण एआई उपयोग, सार्वजनिक हित के लिए एआई, एआई में विविधता और स्थिरता और सुरक्षित और विश्वसनीय एआई शासन सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत तेजी से पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बन रहा है। पेरिस में कल भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने स्थिर और पूर्वानुमानित नीति पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि भारत सुधार, प्रदर्शन और बदलाव के रास्ते पर चलते हुए दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने फ्रांस के निजी क्षेत्र को भारत आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन से अलग एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस से मुलाकात की। यह दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने आर्थिक, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल, सांस्कृतिक, पर्यटन और दोनों देशों के लोगों के संपर्क सहित भारत एस्टोनिया के संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंधों की परिपक्वता के कारण व्यापार की भूमिका में विस्तार हो रहा है। पेरिस में कल शाम 14वें भारत फ्रांस मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मंच के उद्घाटन सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और फ्रांस स्वतंत्र विचारधाराओं की परंपरा वाले दो राष्ट्र हैं। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंध विश्वास संचालित और मूल्यों पर आधारित है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और फ्रांस एक दूसरे की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लैम रिसर्च ने भारत में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े निवेश की घोषणा की है। श्री वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसे भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में एक और उल्लेखनीय घटना बताया। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेमीकंडक्टर भविष्य दृष्टि के प्रति भरोसे की पुष्टि हुई है। लैम रिसर्च कॉरपोरेशन प्रसिद्ध अमरीकी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर उद्योग से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। राज्यसभा में कल आम बजट 2025-26 पर फिर से चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के भागवत कराड़ ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण राजकोषीय घाटा 0.4% तक कम हुआ है। इस चर्चा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। राज्यसभा की कार्यवाही बृहस्पतिवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में देश का प्रत्यक्ष कर संग्रह वार्षिक आधार पर 14.69% की वृद्धि के साथ 17,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19% से अधिक बढ़ा है। संसदीय समिति ने सर्दियों में फसल अवशेष पराली जलाने की घटना को हतोत्साहित करने के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश की है। राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समिति ने कल पेश अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि धान अवशेषों की मात्रा की प्रति इकाई मूल्य की समीक्षा होनी चाहिए और खरीफ फसल से पहले सालाना आधार पर इसे अधिसूचित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।